اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد ایک بار اور صلوات عنایت فرما دیجیے، بس عزیزان محترم، کیونکہ آپ لوگ بھی سارا دن مشوش رہے اکثریت ذہنی طور پہ، اور میں آپ ہی لوگوں کے بارے میں سوچ رہا تھا جس کی وجہ سے خطبے کی تکرار ہو رہی، مجھے آپ کی فکر تھی اپنی نہیں، میں بیٹھا ہوں نا آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، اور انشاءاللہ جب تک زبان چل رہی ہے پڑھتے رہیں گے، جب تک اللہ چاہتا ہے پڑھتے رہیں، باقی کسی چیز کی پرواہ نہ کیا کیجیے، وہ ہمارے لوگوں کو زیادہ پریشانی ہو جاتی ہے، وہ سوشل میڈیا کے زیادہ چیمپئن بن جاتے ہیں اور شروع ہو جاتے ہیں، کسی بھی 2 روپے کی اخبار کی خبر کو اٹھاتے ہیں اور شروع ہو جاتے ہیں، اور شاید انہی کی وجہ سے حکومت کو بھی پتہ چلتا ہے اچھا ایسا بھی کچھ ہوا ہے، پھر وہ حرکت میں آتے ہیں، اب ہمارے لوگوں کی وجہ سے ان کو پتہ چلتا ہے، یہ تو ہر سال نام چلتے ہیں، چلتے رہتے ہیں ان کو نام، لیکن ہمارے لوگوں کو اب زیادہ بے چینی ہوتی ہے کہ بریکنگ نیوز کون پہلے چلا ہے، جو بریکنگ نیوز چلانے کے چکر میں وہ سارے کام ہو جاتے ہیں، لیکن خیر الحمدللہ ہمارے کچھ ساتھی قوم کے ساتھی کل سے بہت پریشان تھے، بہت بھاگ دوڑ بھی کر رہے تھے، مجھے اتنی پریشانی نہیں تھی، مجھے پریشانی یہ تھی کہ واقعی اگر یہ خبر صحیح ہے تو میں نہیں جاؤں گا تو وہاں کیا ہوگا، پھر انہوں نے کہا بھائی اس کے بعد والا مسئلہ تو زیادہ خراب ہو جائے گا نا، اس مسئلے سے وہ بچانا پڑتا ہے، وہ مسائل نہیں ہونے چاہیے، لیکن خیر الحمدللہ پڑھ رہے ہیں آپ کے سامنے، کوئی ایسی بات نہیں، عزاداری ہے، ہم نہیں تھے جب بھی تھی، ہم نہیں ہوں گے جب بھی ہوتی رہی، افراد کی مرہون منت نہیں ہے حسین کی عزاداری، یہ حسین کی عزاداری کی ذمہ داری کسی اور نے لی ہے، اللہ نے لی ہے، اللہ کے پاس ہے، یہ ہوتا رہے گا، سلسلہ ذکر جاری رہے گا، باقی مسئلے مسائل آپ کے نہیں ہیں، جن کے دیکھنے والے ہیں وہ لوگ دیکھتے رہتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی پریشانی کی کوئی گھبرانے کی بات ہے ہی نہیں، کم سے کم اس بندے سے آپ بے فکر رہیے، کوئی ایسی بات نہیں، پکڑ کے کوئی زبردستی بند کر دے، لاک اپ کر دے، زبان سی دے، تالا لگا دے، جیل میں ڈال دے، گولی مار دے، جب تو ہو سکتا ہے، ورنہ نہیں ہو سکتا کام، یہ والا کہ زبان بندی کر دی جائے، لیکن بہرحال پھر بھی ہمارے جن ساتھیوں نے، قومیات کے بہت سارے ساتھیوں نے بہت بیچارے کل سے بھاگ دوڑ کر رہے تھے، ان کا شکریہ بھی ادا کر رہا ہوں، ان کے لیے دعا بھی کر رہا ہوں، اسی طرح جن ذمہ داروں نے بھی جہاں جہاں اپنی ذمہ داری ادا کی ہے اچھی بات ہے، ورنہ پہلے دن ہی خامہ خامہ بدمزگی ہو جائے تو کوئی اچھی بات نہیں، بہرحال یہ تو تھا، وہ آپ کی پریشانی دور کرنا تھی، بہت سارے لوگ ذہنی طور پہ تھوڑا سا پریشان ہوئے تھے، فون بھی مسلسل کر رہے تھے کیا ہوگا کیا ہوگا، میں نے کہا کچھ بھی نہیں ہوگا، جو ہر سال ہوتا ہے وہی ہوگا، آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں، آپ کو پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے، ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر، اب آتے ہیں ہر سال کی طرح 2-3 باتیں بہت ضروری جو آپ سے کرتے ہیں، انتظامی حوالوں سے، انتظام کے معاملے میں، مجلس کے انتظامات کے معاملے میں، آداب مجلس کے معاملے میں آپ پابند ہیں، اسکاؤٹس کے بھی پابند ہیں، پولیس کے سپاہیوں کے بھی پابند ہیں، رینجرز کے سپاہیوں کے بھی پابند ہیں، وہ آپ کے لیے یہاں پر کھڑے ہیں، کس کے لیے کھڑے ہیں، آپ کے لیے، یہ بچیاں جو خواتین کے لیے گرلز گائیڈ کھڑی ہیں، یہ ان کی حفاظت کے لیے کھڑی ہیں، لہذا کسی کو چیمپئن بننے کی ضرورت نہیں ہے، غصہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے کسی پر، آپ کسی پر احسان نہیں کر رہے، نہیں آنا نہیں آئیے، یہ مجلس حسین ہے، جو آتا ہے میں پڑھتا ہوں، کسی پہ احسان نہیں کر رہا، آپ آتے ہیں کسی پہ احسان نہیں کر رہے، وہ آپ کی خدمت کے لیے کھڑے ہیں، اور یہ میں جانتا ہوں، دیکھیں ہونے والا سانحہ کہیں بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، ہو ہی جاتا ہے، ہو رہے نہیں ہو رہے، صبح شام پوری دنیا میں واقعات ہو رہے ہیں، پوری دنیا میں ہو رہے ہیں، آپ کیا نہیں ہو رہے، لیکن بات یہ کہ جو انتظامات آخری حد تک ہو سکتے ہیں وہ انتظامات کیے گئے، بھائی اس سے زیادہ نہیں ہو سکتے، امریکہ میں بھی نہیں ہو سکتے، بتا دوں آپ کو، برطانیہ میں بھی انتظامات ایسے نہیں ہو سکتے، وہ جو آخری حد تک ہو سکتے ہیں ہو سکتے ہیں، اب ہر آدمی کے پیچھے لگائی جائے سیکورٹی، یہ تو آپ بھی جانتے ہیں کہ کہیں بھی دنیا کے کسی بھی حصے میں امکان نہیں ہے، ناممکن ہے، تو ان کے ساتھ تعاون انتظامی امور میں آپ پر فرض ہے، جو ہر سال میں کہتا ہوں، ابھی نہیں کہہ رہا ہوں، ہر سال آپ پر فرض ہے کہ ان کے ساتھ تعاون کریں، ٹریفک پولیس ہو، पुलिस के सिपाही हों, रेंजर्स के सिपाही, हमारे स्काउट्स के बच्चियों को ऐसे हटा दिया, धक्का दे दिया, क्यों भाई? वो भी बाइज्जत खानदान का बच्चा है, आपकी खिदमत के लिए खड़ा है, आप उसके तोहिन कर रहे हैं, आप उसको डांट रहे हैं। किसने हक दिया आपको डांटने का? मत आइए, जाइए घर जाके टीवी पे सुन लीजिए मजलिस, बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ होती है यहाँ पर आने में, गाड़ी दूर खड़ी करने में, ये सब एहसानात करने की ज़रूरत नहीं है। ये फ़र्श अज़ा है या हम सब बराबर हैं? मुझे सिर्फ इसलिए बुलंदी हासिल है कि मैं जिक्र कर रहा हूँ, आप में से जो भी जिक्र करेगा वो बुलंदी पर आ जाएगा, बात खत्म होगी, वरना मैं भी आपके बराबर हूँ। किसका मर्तबा क्या है, दर्जा क्या है, ये हुसैन जाने, उसकी माँ जहरा जाने, ये हम नहीं तय कर सकते। सलवात भेज दीजिए मोहम्मद आले मोहम्मद। होगी एक बात, ये तो होंगे इंतजाम से मुतालिक बात के, सब के साथ आपको बहुत अच्छे सलूक से, और यही मेरी उन फोर्सेस के सिपाहियों से भी अपील है कि मोहब्बत से, बाहमी एहतराम, एक दूसरे के एहतराम का ख्याल कीजिए, एक दूसरे की इज्जत नफ्स का ख्याल कीजिए, सब बाइज्जत हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है हुसैन के बारगाह में। तो उन फोर्सेज के जवानों से, सिपाहियों से मेरी यही गुजारिश है कि अज़ादारान हुसैन है, ये मातम हुसैन करने वाले हैं, औलाद रसूल का गम मनाने वाले हैं, खानवाद रसूल का गम मनाने वाले हैं, आप भी इनके साथ एहतराम से पेश आइए, और इनको भी मेरी यही नसीहत है कि उनके साथ भी अपने भाइयों के साथ आप एहतराम से पेश आइए। ये तो एक बात हो गई, अब दूसरी बात आ जाइए खदशात की, हर साल की तरह खदशा खदशा खदशा, सिक्योरिटी खदशात सिक्योरिटी खदशात, और हर साल की तरह ये बात भी कि ये जितना खतरनाक साल है इससे पहले नहीं था, ये जो आ रहा है जो हो रहा है ये सबसे ज़्यादा खतरनाक है जनाब, बहुत ज़्यादा होशियार रहने की। अच्छा है कभी, क्योंकि अरे आप सरहदों की सूरत हाल देख रहे हैं ना कि बुजदिल दुश्मन कुछ भी कर सकता है ना, जो हमारी सरहदों पे कारिस्तानियाँ करने की कोशिश कर रहा है उसके एजेंट क्या यहाँ नहीं है? है ना, यहाँ भी उसके एजेंट मौजूद हैं, तो वो अपना कश्मीर का या सरहद का या उसके मुल्क में जो कुछ भी उतारने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, तो खतरात तो अपनी जगह हैं, इसमें तो कोई शक नहीं। मैं कब कह रहा हूँ कि नहीं है भाई, ये तो हर साल है और कयामत तक रहेंगे, हमेशा रहेंगे ये खदशात, हमेशा रहेंगे। तो भाई क्या किया जाए, खदशात हैं हुआ करें, अज़ादारी करनी है कि नहीं करनी है, मातम मजलिस करना है नहीं करना, वो खत्म, जो भी खतरा हो कितना ही बड़ा खतरा हो हमें तो जाना है भाई, हमें मजलिस में भी जाना है, हमें मातम भी करना है, हमें आशूरा और तासुआ और चेहरम के जुलूस को भी पहले से ज्यादा शान से उठाना है। पहले से ज्यादा शान से क्यों उठाना है? इसलिए ज्यादा शान से उठाना है कि शोहदा की जितनी तादाद बढ़ती जाएगी फूलों की सुर्खी भी बढ़ती चली जाएगी। लब्बैक या हुसैन, 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 लब्बैक या हुसैन। ये बात कुछ भी हो जाए कोई परवाह नहीं, मुहर्रम का चांद हो गया बस ये सर हुसैन का है, अब अपना कुछ नहीं है जो कुछ भी। और आप तो माशाल्लाह इन तजुर्बात से गुजरते रहे हैं, आपको काहे की परवाह, नहीं गुजर चुके, पूरी कौम गुजरती रही है, गुजरते रहे और भी इम्तिहान देंगे इंशाल्लाह। बस एक दुआ किया कीजिए कि अल्लाह साबित कदम रखे, खौफ नहीं, फर्श अज़ा पे खौफ नहीं, जिसके दिल में खौफ है उसको फर्श अज़ा पे बैठने का हक ही नहीं है, वरना फिर ऐसा होगा कि खौफ की हालत में भागता हुआ मारा जाएगा, फायदा फायदा, खौफ ज्यादा होके मरने से फायदा, ये लब्बैक या हुसैन कहते हुए तो मरूं, फर्श अज़ा से उठूं तो हुसैन का नाम तो हो सकता है। लिहाजा यहां आके साहब खौफ बस दूर, सब हुसैन का, ये सर किसका है? हुसैन का, जान माल सब हुसैन, माएं अपने बच्चों को छोटे छोटे इसलिए तो भेजती हैं मजलिसों में कि सब हुसैन का दिया हुआ है, अगर हुसैन चाहेगा दे देंगे उसको, कुर्बानी मांगेगा दे देंगे कुर्बानी, ठीक है। लिहाजा हर खौफ और ख़तर को दिल से निकाल के, और ये पैगाम हर जगह है मेरा, छप भी चुका है हर जगह के लिए पैगाम के, नज़्म व ज़ब्त डिसिप्लिन बरकरार रखें, बड़े से बड़ा सानिहा हो जाए नज़्म व ज़ब्त को नहीं खोना। आपको याद है ना कि इसी जगह आपके नज़्म व ज़ब्त ने कितने बड़े सानिहे को बचाया था, वरना अगर उस दिन लोग इधर उधर परागंदा हो जाते तो कितना नुकसान होता, क्योंकि आप डिसिप्लिन में थे, आप नज़्म व ज़ब्त में थे, तो जहाँ भी नज़्म व ज़ब्त होता है वहाँ नुकसान कम होता है और कौम को हौसला भी ज़्यादा मिलता है। लिहाजा नज़्म व ज़ब्त के साथ कितना ही बड़ा सानिया हो जाए, हौसला नहीं हारना, हवास काबू में रखने, कंट्रोल रखना है हवासों को, अब हो गया तो हो गया, देखेंगे, पहले नहीं देखा गया, आशूर पे नहीं देखा, चेलू पे नहीं देखा, सारा साल नहीं देखा, दिन के 300 साल के 365 दिन नहीं देखा, सब देखा है। लिहाजा हर खौफ को दिल से निकाल के अज़ादारी करनी है, जो भी होगा देखा जाएगा, अल्लाह ने जो इम्तिहान मुकद्दर में रख दिया उससे फरार मुमकिन है? नहीं है ना मुमकिन, वो तैयार नहीं है ज़हनी तौर पे, इंशाल्लाह कुछ भी नहीं होगा, अगर कुछ होगा तो देखा जाएगा। बस अब आप नारा लगाएंगे लब्बैक या हुसैन का, तो फिर मैं बात कहा करूंगा। लब्बैक या हुसैन,
लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन,
जज़ाक अल्लाह। अभी इतनी बुलंद आवाज एक सलवात भी नायत फरमा दीजिए। आइए अब मौजू का तारुफ कराते हैं। सूरह जासिया की 24वीं आयत के जिस हिस्से को हमने सरनामे कलाम करार दिया, छोटा सा हिस्सा है, मुख्तसर सा, मगर मतालिब के समंदर लिए हुए, जैसे कि कुरान मजीद की हर आयत मतालिब के समंदर लिए हुए, और तो लफ्ज़ उर्दू में मिलते नहीं, डिक्शनरी में यही है, बहरे बेकरा कह लीजिए, वो समंदर जिसका कोई किनार नहीं है, जिसकी कोई तह नहीं है, ऐसा समंदर कह लीजिए, हर आयत ऐसे मतालिब लिए हुए, इससे ज़्यादा उर्दू में गुंजाइश नहीं है, बहरे बेकरा से बात कोई लफ्ज़ नहीं है अब इसके बाद कि एक एक आयत। वमा वकालू वमा हया इल्ला हयात दुनिया नमूतो वना हया। और ये लोग कहते हैं कि दुनियावी जिंदगी के सिवा है क्या, जो कुछ भी है वो ये दुनियावी जिंदगी है। देहरियों के लिए कहा जा रहा है, देहरियों से मुराद होता है दुनिया परस्त, देहर से निकला है ना दुनिया परस्त। अब ये देहरियों की इस्लाह मखसूस हो गई वो कम्युनिस्टों के लिए, इसके लिए वो अलग अलग चीज़ है, लेकिन लफ्ज़ देहर का माना क्योंकि दुनिया है, ज़माना है, तो देहरिया कहते हैं दुनिया परस्त को। किसे कहते हैं? दुनिया परस्त, ज़माना परस्त, उसको कहते हैं देहरिया। अब हमारे यहाँ इस्तिलाह में उनको कहा जाने लगा था जो बेचारे बड़े इनकलाबी होते थे किसी ज़माने में, अब तो उनका पता निशान नहीं मिलता, पता नहीं कहाँ चले गए, सारे सुरखे मैं तो ढूंढते ही रहता हूँ, नज़र ही नहीं आते, पता नहीं कहाँ चले गए। अच्छे भले इनकलाबी होते थे, अच्छा भला बायां बाजू था, वो बायां बाजू ही पता नहीं कहाँ गुम हो गया, किस तरफ गुम हो गया, किस तरफ चला गया, कहाँ चले गए, उनके नारे वारे कुछ समझ में नहीं आता। खैर, तो बस ये उनके बारे में वकालू वमा हयात दुनिया, वमा वमा हया इल्ला हयात दुनिया, और ये दुनियावी जिंदगी के सिवा जिंदगी कुछ भी नहीं है। वकालू वमा हया इल्ला हयात दुनिया, जो कुछ भी है वो दुनिया की जिंदगी है। नमू तो वना हया, इसी में मरते हैं और इसी में जीते हैं, ये दुनियावी जिंदगी है, कुछ मर जाते हैं, कुछ जिंदा रह जाते हैं, और कुछ भी नहीं है सिवाय दहर के, सिवाय जमाने के। वमा यो हो लेकोना इल्ला दहर, यह आखिरी हिस्सा मुकम्मल हुआ आयत का, और कोई नहीं मारता हमें, कोई हलाक नहीं करता सिवाय जमाने के, यानी मियाँ दुनिया कमाओ भाई, यही दुनिया एक ही बार मिली है जिंदगी, फिर मर जाओगे, लोग इसी तरह आते रहे जाते रहे, यही होता रहेगा, वो मर गए हम भी मर गए आने वाले भी मर जाएंगे, ये कहलाते हैं दुनिया परस्त। इनके कौल को कुरान ने नकल किया है कि ये हर जमाने में, हर यानी कब कुरान नाजिल हुआ, उस वक्त भी देहरियों का वजूद था, उससे पहले भी था, उससे पहले भी था, उससे पहले भी था, यानी जनाब आदम की नस्ल शुरू हुई और एक तबका देहरियों का, दुनिया परस्तों का। क्या मतलब है? इनकलाबियों का नहीं, दुनिया परस्तों का। एक वो अलग होते थे इनकलाबी जिनको देहरिये का इल्जाम लगा के कत्ल करते थे हुक्मरान, क्या करते थे, उन पर इल्ज़ाम लगाते थे कि ये देहरिये हैं, और उन इनकलाबियों को फांसियों पर लटका दिया जाता था, उनकी गर्दनें काट दी जाती थी, कहीं उनको गोलियों से जदीद ज़माने में शूट कर दिया जाता था, उड़ा दिया जाता था, देहरिया का इल्ज़ाम ही से लगाया जाता था ताकि दुनिया को बताया जाए कि दुनिया परस्त है, ये अल्लाह को नहीं मानता। हालांकि वो बेचारे मरने वालों से, वो मारने वाला बड़ा देहरिया होता है जो उनको मारता है, क्योंकि वो अपनी दुनिया बचाने ही के लिए तो उनको मारता है इनकलाबियों को। तो इसलिए मैं तशरीह कर रहा हूँ कि देहरिये से हर जगह मुराद ये ना ले लीजिएगा ये तो देहरिया है, नहीं, मुमकिन है कि उसके ख्यालात सुकरात जैसे हों, मुमकिन है कि उसके ख्यालात सुकरात जैसे हों, भाई सुकरात पर देहरिये होने का इल्ज़ाम लगा के मारा गया है, मालूम है आपको, हालांकि बेचारा देहरिया नहीं था, मैं उसको देहरिया बनाया गया मारने के लिए, कत्ल करने के लिए उसको देहरिया बनाया गया, मंसूर हल्लाज को, भाई क्या पता आपको कि वो क्या था उसके अफकार, उसको देहरिये होने का इल्ज़ाम लगाया गया फिर मारा गया, उसके अफकार अपनी जगह, तो समझे कि देहरिये का हर जगह मतलब ये नहीं होता, दुनिया पर ये इल्ज़ाम भी लगाया जाता है। लेकिन कुरान खालिसतन उन लोगों के लिए कह रहा है कि जो हर जमाने में होंगे और दुनिया परस्त होंगे, यानी देहरिया कौन है, जरूरी नहीं कि जो अल्लाह को नहीं मानता वो देहरिया है, मुमकिन है नमाजें पढ़ता हो मगर देहरिया हो। अब आसानी से समझ में आ रही है बात, अब समझ में आ रही है हमारी बात कि मुमकिन है नमाजें पढ़ता हो दहरिया हो, रोजे रखता हो दहरिया हो, हज करता हो दहरिया हो। क्यों? कि मैंने आपको माना समझा दिया कि दहरिया का माना है दुनिया परस्त। है तो मजहब के पीछे जा रहा हो मगर दुनिया के लिए जा रहा हो, मजहब पे चल रहा हो, मजहब का लिबादा ओढ़ा हुआ हो मगर दुनिया के लिए। तो अब समझ में आ गया दहरिये का क्या मतलब है। यह अलग बात कि हमारी दुनिया में किस माना में इस्तेमाल हो रहा है, मगर दहरिये का माना है दुनिया परस्त। अब वो दुनिया परस्त मुल्ला हो तब भी दहरिया, मुल्ला परस्त ताजिर हो, दुनिया परस्त ताजिर हो जब भी दहरिया, दुनिया परस्त खतीब हो जब भी दहरिया, दुनिया परस्त आलिम हो जब भी दहरिया। बड़ा मुश्किल है यह माना आपके लिए हजम करना, लेकिन मैं तो बताऊंगा ताकि आपको पता तो चल जाए कि दहरिया कहते किसे हैं। दहरिया कहते हैं जमाना परस्त, दुनिया परस्त, इब्नुल वक्त, जमाने की पूजा करने वाला, हालात की पूजा करने वाला, उसे कहते हैं दहरिया। इसका मेरे उनवान से क्या ताल्लुक है? कैसर हाजिर और कलाम मौला, मौजूदा दौर और मेरे मौला का कलाम। क्यों मौजूदा दौर में? पहले तो ये साबित कीजिए कि सिर्फ मौला का कलाम रहनुमाई कर सकता है, यही हमने उनवान दिया है ना, असर हाजिर नहजुल बलागा, अगर भूल नहीं रहे तो ऐसे ही है, यही उनवान दिया है, नहजुल बलागा और असर हाजिर, यानी मेरे मौला का कलाम और मौजूदा दौर, मौजूदा ज़माना। क्यों भाई असर हाजिर में क्या कुरान काफ़ी नहीं है? क्यों नहीं है? बेशक अल्लाह का कलाम क़यामत तक के लिए है, उसकी हर आयत, हम तो शुरू ही आयत से करते हैं इसीलिए ताकि किसी को गलत फहमी ना रहे कि अगर मौला के कलाम को भी पेश करेंगे तो आयत के साए में पेश करेंगे। क्यों? कलामुल्लाह है ना, वो कलामुल्लाह है, फौका कलामुल बशर, और ये जो है फौका, ये कलाम अली का कलाम कौन सा है? ये नहजुल बलागा जो है तहता कलामुल्लाह फौका कलामुल बशर, तहता कलामुल्लाह फौका कलामुल बशर, अल्लाह के कलाम के नीचे है और इंसानों के कलाम से आला है। कुरान की सच्चाई के लिए इतना काफी है, कुरान की सच्चाई के लिए इतना ही काफी है जुमला मेरा, मुझ नाचीज का तालिब इल्म का कोई बड़ा बोल मुंह से ना निकल जाए गलती से, इतना जुमला मेरा नाचीज का काफी, कलाम के कुरान की सच्चाई के लिए इतना काफी है कि कुरान की आयतें तो छोड़िए, अली के कलाम का कोई जवाब ना ला सका। इतना काफी है कि अल्लाह के कलाम की सच्चाई के लिए जिस आयात इलाही की तिलावत करते हुए अली के सर पे जरबत लगे, जिसकी सारी सारी रात तिलावत करता हो, एक रात में हजार रकात नमाजें पूरा कुरान खत्म करता हो, उसका कलाम तहता कलामुल्लाह है ना, अल्लाह के कलाम के बाद पहचान लिया जाता है। याद रखिए जितने भी फसाहत और बलागत के मायरे, एक जगह मैं ऊट पटांग सुन रहा था किसी गुफ्तगू, वो कहता पता नहीं कहाँ वो जर्मनी गया कि पता नहीं अमेरिका गया, उसको पता नहीं कहाँ कहाँ जाते हैं, पाकिस्तान में वाकया भी ऐसा नहीं होता उनके साथ कि किसी यूनिवर्सिटी में गया तो वहाँ के पता नहीं किसने उनको आदमी ने दिखाए कार के मैं बरसों से मुकाबला कर रहा हूँ कुरान और नहजुल बलागा रख के, और मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि ये एक ही फ़र्द के कलाम हैं दोनों। अच्छा सब ने वाहवाह कर दी, यहाँ भी वाहवाह कर रहे हैं, वहाँ तो बहुत नारे लगे जहाँ पर हुई थी ये बात, बड़ी वाहवाह हुई। मैंने नाचीज ने एक सवाल किया कि मैंने कहा जब इतना वो जानता था तो कलमा क्यों नहीं पढ़ लिया उसने, इतनी तहकीक के बाद भी जो मुसलमान नहीं हो उससे बड़ा उल्लू कौन होगा, उससे बड़ा बेवकूफ़ कौन होगा, उसके इल्म का क्या भरोसा। यही फर्क है अल्लाह के कलाम में, रसूल के कलाम में, अल्लाह के कलाम में, अली के कलाम में, कि जितने भी ज़बाने अरब के माहिर हैं आयात के बीच में किसी का भी कलाम रख दिया जाए, हाफिज ना भी हो अलग कर देगा कि ये आयत है और ये आयत नहीं है। इसीलिए कुरान मजीद में क़यामत तक के लिए तहरीफ की गुंजाइश ही नहीं, बातिल दाखिल ही नहीं हो सकता, ना सामने से ना अकब से। लिहाजा नहजुल बलागा में भी जहां अली ने आयात की तिलावत की है
کر دیتا ہے کہ یہ علی کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ یہ اور بات کہ میرا چیلنج اپنی جگہ باقی کہ اللہ کے کلام کی سچائی کے لیے بس اتنا کافی ہے، اللہ کے کلام سے مقابلہ بعد میں کرنا، پہلے علی کے کلام کا جواب دو گے۔ ہم سے لو دلیلیں، ورنہ لوگ جعلی آیات بناتے رہیں گے اور تھوپتے رہیں گے، لاتے رہیں گے انٹرنیٹ پہ جعلی سورے لاتے رہیں گے، اور تم لڑتے رہو گے ان سے، بھڑتے رہو گے۔ دلیل ہم دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے ہم اس کلام کو ترجیح دیتے ہیں۔ جیسے قرآن مجید کی جب یہ آیت نازل ہوئی، انما انت منذر ولکل قوم ہاد، اے رسول آپ ڈرانے والے ہیں ہمیشہ کے لیے، عالمین کے لیے، جانتے نا آپ، شاہدم و مبشرم و نذیرہ، کس کے لیے؟ عالمین کے لیے۔ پھر بھی نہیں تو یوں پڑھ لیجئے، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ کس کے لیے ڈرانے والے ہیں؟ جہاں منذر آ گیا لفظ کہ آپ ڈرانے، تو کس کے لیے ڈرانے والے ہیں؟ صرف انسانوں کے نہیں، عالمین کے۔ اس پہ بحث کر چکے ہیں دو تین سال پہلے یہاں پہ، اس کی تفصیل میں نہیں جائیں گے۔ سمجھ میں آ گیا؟ جب یہ آ گیا انما انت منذر، آپ کیا ہیں؟ ڈرانے والے ہیں۔ تو ڈرانے والے کس کے ہیں؟ یہ جو سامنے بیٹھے ہیں حضور کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم، یہ ان کے لیے ہیں منذر؟ پہلے قرآن میں یہ تو سمجھ لیا جانا کہ منذر کون ہے۔ رسول فرما رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے منذر کرنا کر بھیجا ہے، میں ہوں ڈرانے والا۔ اس آیت کی تفسیر میں بھی یہی ہے کہ میں ہوں منذر، رسول سے ہی کہا جا رہا، ورنہ کون ہے خطاب مخاطب کون ہے قرآن کا؟ اگر رسول نہیں ہے تو چلیے اب ڈھونڈیے کون ہے، انما انت منذر کا کون ہے مخاطب؟